इसमें तो प्रकट है। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए तो केवल स्त्रियों का चित्र और बुक ठेला लेकर के और केवल वही गाथा बेच रहे हैं। स्त्री पुरुष के आपस के आकर्षण उसी को लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, चाहे टेलीविजन हो कुछ भी हो, और बातचीत में कभी कभी वो एक मिनट भी नहीं सोते हैं। स्त्री के विषय में जहाँ चर्चा चली कि वो बस उनकी नींद हराम, खाना पीना भूल जाते हैं और बरसों तक सुनते रहते हैं। इतना कहाँ कौन किसी विषय को सुन रहा है। इस संसार में प्रकट देखा जा सकता है, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी को याद आ गई कि जैसे स्त्री लंपट पुरुष स्त्रियों की चर्चा सुनते हैं, वैसे आप कृष्ण चर्चा में नित्य नया रस ले रहे हैं। यह एक अद्भुत उपमान है, दृष्टांत है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। और कहते हैं सताम अयम निसर्ग, सज्जनों का, कृष्ण भक्तों का ऐसा ही स्वभाव होता है। निसर्ग, निसर्ग का अर्थ है जो जन्म के साथ ही साथ लगा हुआ है। निसर्ग का जन्म भी होता है, स्वर्ग का जन्म होता है। तो जन्म से ही जो अभ्यास पड़ा हो या स्वभाव बन गया हो, अपने आप कोई प्रयास नहीं करता है। जैसे स्त्री लंपट पुरुष स्त्री में आसक्त होने के लिए कहीं ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, कोई सिखाया नहीं जाता है उनको कि ऐसे आसक्त होना चाहिए और ऐसे वार्ता करनी चाहिए। वो अपने आप आसक्त रहते हैं और उनको कोई कहता नहीं है कि अब स्त्री कथा सप्ताह चालू करो, कोई कहता नहीं है, उनका चलता ही रहता है, अखंड स्वभाव उनका होता है। तो आप जैसे भगवत भक्तों का यही स्वभाव है, क्योंकि सारग्राही होते हैं, सारभृता। इस जगत में सार क्या है? सार है कृष्ण वार्ता। जैसे भगवान तो जगत के सार हैं ही, लेकिन इस जगत में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं, सब कुछ सार है कृष्ण कथा। तो ये सार ग्राही होते हैं। सार भृताम सताम अयम निसर्ग, यही निसर्ग होता है। क्या कि जदर्थ वाणी श्रुति चेतसाम अपी, जिनका हमें, जिनके लिए, जिसके लिए कृष्ण कथा के लिए ही सज्जनों की वाणी होती है, और उनके कान और उनका मन, बस जदर्थ का अर्थ है जिसके लिए, अर्थात कृष्ण कथा में ही उनका चित लगा रहता है, उनकी श्रुति कान और उनकी वाणी, जदर्थ वाणी श्रुति चेत सामग्री, सब कुछ उनका कृष्ण में लगा रहता है, कृष्ण कथा में लगा रहता है। यही सज्जनों का स्वभाव है कि वे प्रतिक्षण अच्युत कथा को नवीन बनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कभी फ्रस्ट्रेशन या कभी थकावट नहीं होती, कभी उबते नहीं है कृष्ण कथा, जैसे आप हैं। प्रतिक्षण, यहाँ प्रतिक्षण का अर्थ है प्रत्येक पद पर जैसे जैसे सुनते हैं वैसे वैसे सुनने की लालसा बढ़ती जाती है, लालसा बढ़ती जाती है, लालसा बढ़ती जाती है। यही है भक्तों का स्वभाव। सताम अयम सार भृताम निसर्ग, जदर्थ वाणी श्रुति चेत साम अपी। यहाँ पे अर्थ चकार के अर्थ में है, वाणी भी कृष्ण कथा में ही उनकी वाणी लगी रहती है, उनके कान लगे रहते हैं, और मन आदि सब कुछ, और अनुक्त समूचे उनका जो कुछ भी है सब कृष्ण कथा के लिए ही रहता है। प्रतिक्षण नव्यवत, उनको कृष्ण चरित्र प्रतिक्षण नव्य लगता है, नया लगता है। कैसे? स्त्रिया बिटाने में वो साधुवाद, जैसे स्त्री लंपटों को स्त्री की चर्चा बहुत अच्छी लगती है, उस तरह से भगवान के भक्तों को भगवान की चर्चा अच्छी लगती है। दो ही चर्चा के विषय हैं इस संसार में, और भगवान से मुकाबला कर सकती हैं तो स्त्रियां वास्तव में। इस संसार में यदि भगवान अनंत रस के समुद्र हैं, अनंत, उनके सामने स्त्रियों का क्या आकर्षण है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मायाबद्ध जीवन के लिए तो स्त्रियां ही सब कुछ, और भक्तों के लिए कृष्ण है, सज्जनों के लिए कृष्ण है। स्त्री में और कृष्ण में एक कंपटीशन जैसा है, कौन ज्यादा आकर्षित कर सकता है। स्त्रियां तो विजयी है ही संसार में, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि ज्यादा संख्या स्त्री लंपटों की है इस संसार में, और कृष्ण लंपटों की संख्या बहुत कम है। संख्या बहुत ज्यादा इसलिए तो बिटान बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं और स्त्रियां एक वचन का। एक स्त्री की चर्चा बहुत बहुत स्त्री लंपट करते रहते हैं, इसे अभी सिद्ध हुआ है। एक स्त्री को देखने के लिए लाखों स्त्री लंपट टिकट खरीदते हैं इस संसार में, लेकिन कृष्ण को देखने के लिए कौन आता है? ये कृष्ण कथा के लिए इस संसार में देखा गया है ना, आज भी चलता रहता है स्त्री की वार्ता, स्त्री ने ये गाया, ऐसी चाल है, ये है। अब तो वर्णन फालतू चीज है इस मंच से, किंतु स्त्रियों का ही वर्णन सारा संसार कर रहा है। तो यह जो बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं वास्तव में बिल्कुल सत्य बात। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदान, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहुं हे राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, हे राम उतना प्रिय हमको लगी है आप ऐसा तुलसीदास जी विनय करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है सुखदेव गोस्वामी की यहाँ पर, और महाराज परीक्षित की महिमा को समझने के लिए काफी है, दिग्दर्शन हो रहा है कितना महाराज परीक्षित कृष्ण में आसक्त, कृष्ण कथा में आसक्त। वाणी श्रुति और चेतसा, प्रत्येक मनुष्य के पास भगवान ने ये सेट दिया है, सुनने की शक्ति दिया है, बोलने की शक्ति दिया है, और संकल्प विकल्प करने की, याद करने की शक्ति दिया है। तो याद भी करते हैं भक्त जन तो कृष्ण के, बोलते हैं तो कृष्ण के विषय में, और सुनते हैं कृष्ण के विषय, और ठीक जदर्थ वाणी श्रुति चेतसा मतलब बीटों के लिए भी ये प्रयुक्त हो सकता है। स्त्री के ही विषय में सुनते हैं, बोलते हैं और मनन कर, यही उनका कार्य। तो जैसे स्त्री लंपट पुरुष स्त्रियों से प्रेम करते आकृष्ट रहते हैं, तो उस तरह से महाराज परीक्षित श्री हरिश्री जी कहते हैं कि ये प्रश्न उठाए हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी इतना भद्दा उदाहरण क्यों दे रहे हैं महाराज परीक्षित के साथ। तो एक शब्द की सहायता से अर्थ करते हैं कि क्योंकि कृष्ण भी पर पुरुष हैं और परा प्रकृति से वे लीला कर रहे हैं। तो परा प्रकृति मतलब स्वरूप शक्ति है पर पुरुष। तो पर पुरुष का एक अर्थ हुआ किसी स्त्री के वो पुरुष नहीं है, पर पुरुष मतलब जार, पर पुरुष का अर्थ एक है जार, और परा प्रकृति वो भी प्रकृति जो है परा है वो दूसरे की है, एक अर्थ ये हुआ। तो पर पुरुष का परा प्रकृति के साथ जो लीला उनकी लीला हो रही है तो बीटों से और स्त्री लंपटों से मेल हो रहा है इसका, इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया, गलत उदाहरण नहीं है। तो श्री कृष्ण महाराज परीक्षित भी तो उसी की लीला सुन रहे हैं, पर पुरुष की लीला को परा प्रकृति के साथ भी सुन रहे हैं, वो अभी तो वही चर्चा सुन रहे हैं, इसीलिए मिलान हो गया। परा प्रकृति मतलब स्वरूप शक्ति केवल एक शब्द सादृश्य है बीटों के साथ, इसलिए उदाहरण ठीक है सटीक। भगवान जब बहिरंगा प्रकृति के साथ लीला करते हैं तो उसको परा प्रकृति नहीं कहते हैं, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। लेकिन भगवान की वृंदावन की लीला पूर्ण स्पिरिचुअल है, परा प्रकृति के साथ है, और ये पर पुरुष हैं मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं, एक अर्थ हुआ। तो जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके और पर पुरुष से प्रेम करे और वह पर पुरुष उस पर स्त्री से प्रेम करे, तो इस बात को इस संसार में लोग बहुत अधिक सुनना चाहते हैं। लोगों की यही दशा संसार में हो गई है, क्या किया जाए। आप लोगों में से किसी ने पहले कुछ सिनेमा देखा होगा, सिनेमा में क्या दिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि कोई एक लड़की है और कोई एक लड़का है और समाज से विरुद्ध है उन लोगों में आपस में प्रेम हो गया है ना। तो ये दिखाया जाता है कि दोनों चेष्टा करते हैं कि हम मिलें, हमारा प्रेम बरकरार रहे लैला मजनू की तरह, वो ये कोशिश करते हैं। सब फाल्स कहानियां होती हैं, सत्य नहीं होती, लेकिन वो दिखाते हैं इस तरह से। और लिखने वाला, देखने वाला, ये सब कोशिश करते हैं कि ये दोनों विजयी हो जाए, समाज हार जाए उनके उनके उनसे टकरा करके। दिखाया गया है कि परिवार हार जाता है, समाज हार जाता है, और उनको विजयी दिखाने का प्रयास करते हैं कि उन दोनों का जो संबंध है वो विजयी रहे, है ना। ज्यादातर यही कोशिश की जाती है। हमने तो ऐसा एक भी नहीं देखा है, लेकिन कुछ कहानी पढ़ा है उससे हम अनुमान करते हैं कि लोग यही प्रयास करते हैं कि जो अवैध संबंध है वही विजयी हो जाए। संबंध है, सामाजिक, समाज विरोध करे चाहे परिवार विरोध करे, उसी को विजयी दिखाना चाहती है ना। ये बात तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चूंकि लोग भ्रष्ट है, दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए वही चाहते हैं। तो इस संसार में लोगों की रुचि है इस तरह के बातों को सुनने और कहने की, इसीलिए भगवान ने स्वयं ही यह लीला की है, स्वयं जार बन करके अपनी ही नित्य प्रियाओं के साथ उनको भिन्न स्थान पर जन्म दिया, और फिर उनसे पूर्वराग किया, मिला। वो सामाजिक संबंध नहीं है, समाज विरोध करता है, फिर भी कृष्ण मिलते हैं, लीला दिखाते हैं, पर किया भा। तो एक उद्देश्य यह भी है कि लोगों की रुचि जो इस तरह की कथा को पढ़ने की है, सुनने की है, तो मेरी ही कथा क्यों न पढ़े, कि मैं किस तरह से परिस्त्रियों से मिल रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, और वे किस तरह से अपने पतियों को छोड़कर मुझसे प्रेम करती हैं। ऐसे यह मुख्य उद्देश्य भगवान का नहीं है, लेकिन यह भी एक उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि लोग और उपन्यास और कहानियां आदि न पढ़ करके मेरे ही बारे में पढ़े, जैसे उनकी शुद्धि होगी। कि जो पढ़ना ही है तो पढ़े। श्रील प्रभुपाद जी भी इस बात को लिखते हैं, और वे ये भी लिखते हैं कि कुछ लोगों की राजनीति में बहुत दिलचस्पी रहती है, तो भगवान हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए और स्थान में भी बहुत पॉलिटिक्स खेले हैं। तो अगर ये सुनना हो तो कृष्ण का ही पॉलिटिक्स सुनना चाहिए और वही उनकी राजनीति सुननी चाहिए, तो उसे शुद्धि हो जाती है। भगवान सब प्रकार के मनुष्यों के लिए लीला किए। मर्यादा में कोई रहना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, तो भगवान उसके लिए भी दिखाए कैसा गृहस्थ बनना चाहिए, इसको बन करके सिखाए हैं द्वारका में। और कई प्रकार की चीजें जो जो पढ़ना चाहता है, जो सुनना चाहता है, श्री कृष्ण लीला में वो सब कुछ है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान सर्वावतारी। श्री सुखदेव गोस्वामी को यह घटना याद आ रही है कि महाराज परीक्षित की कृष्ण कथा में वैसी आसक्ति है जैसे स्त्री लंपटों की आसक्ति स्त्री में होती है। तो कृष्ण एक वचन में है और यहाँ स्त्री को भी एक वचन में रखा है, और कृष्ण कथा के लंपट बहुत हैं और इसी तरह स्त्री में लंपट बहुत। तो बहुत सावधानी से मिला करके बोल रहे हैं। आप धन्य हैं, आपकी कृष्ण कथा में आसक्ति है, तब इतनी प्रशंसा करके और फिर कथा प्रारंभ कर रहे हैं पूछे हुए विषय को। सुनु स्वा वही तो राजन अपि गुह्यम बदामिते। हे राजन, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, विराजमान हैं, कृष्ण कथा में आसक्ति के कारण आपकी शोभा बढ़ गई है। राजन का अर्थ ये, हे राजन अवहित सुनो, सावधान होकर सुनिए, पूर्ण मन लगाकर सावधान होकर के सुनिए। यद्यपि यह गुह्य बात है, बहुत रहस्यमय घटना है, फिर भी बदामिते मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्यों कि एक सिद्धांत है कि ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमाप्युतः। गुरुजन अति गुह्य रहस्य भी अपने प्रेमी शिष्य को बता देते हैं। स्निग्धस्य शिष्यस्य, स्निग्ध का अर्थ होता है स्नेहवान शिष्य, जो गुरु के प्रति सही प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, उसको स्निग्ध कहा जाता है। स्नेह शब्द से स्निग्ध शब्द बना है, और स्निग्ध का खास अर्थ होता है फॉलोअर, अनुगामी। जो गुरु की आज्ञा माने, गुरु का रुख देख करके चले, उसको स्निग्ध शिष्य कहा गया। तो आजकल के युग में तो शिष्य ऐसे होते हैं जो मन में जितना ही विरोध हो गुरु का किया करते हैं। कभी कभी बाड़ी से भी करते हैं, शरीर से भी करते हैं, लेकिन मन में विरोध करने वालों की संख्या तो ज्यादा ही होती है। स्निग्ध शिष्य का अर्थ है जो पूर्ण समर्पित हो, बहने के अर्थ में अनुगमन, गुरु का रुख देखकर चलना, सेवा करना, सुनना, नम्र रहना, स्निग्ध शिष्य। स्निग्ध शिष्य के प्रति गुरुजन गुह्य से गुह्य बात कह देते हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति का कोई एक ही गुरु नहीं हो सकता है। गुरवः शब्द यहाँ कहा गया, गुरु बहुत होते हैं। एक जीव की सहायता करने के लिए बहुत गुरुओं की आवश्यकता है। यह कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं है कि हम एक जगह फंस गए, अब दूसरे से ज्ञान नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये तो भक्ति क्या करना है, पढ़ाई जैसा है। जैसे स्कूल में कोई लड़का जाता है तो उसको कई टीचर पढ़ाते हैं, कोई कोई विषय पढ़ाता है, कोई कोई विषय पढ़ाता है, और उस लड़का पढ़ करके एक दिन योग्य व्यक्ति बन जाते हैं। तो उसी तरह से बहुत बहुत गुरुओं के हेल्प की आवश्यकता है। एकादश स्कंद में भगवान दत्तात्रेय जी ने इस बात को कहा है, न हि कस्मात् गुरुर्ज्ञानम् सुस्थिरम् पुष्कलम् भवेत्। एक गुरु से स्थिर और पूरा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म जो है, भगवान जो है, अनंत वैचित्री से युक्त है। एक व्यक्ति भगवान की सारी वैचित्री का वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान की किसी विशेषता को कोई बताएगा, किसी को कोई बताएगा, किसी को कोई बताएगा। इस तरह से एक व्यक्ति ब्रह्म पथ पर चल रहा है, भगवान मार्ग पर चल रहा है, और उसकी सहायता बहुत गुरुजन करते हैं। ये सीखना चाहिए, कोई व्यक्ति वास्तव में भगवत पथ पर बढ़ना चाहता है तो उससे बहुत लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। जैसे सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी के गुरु सुखदेव गोस्वामी भी हैं, और इनके पिता भी गुरु थे, और भगवान वेदव्यास देव गुरु हैं। स्वयं ऋषि जन कह रहे हैं कि जितने ऋषि संसार में हैं, भगवान वेदव्यास देव हैं और लोग हैं, वो सब बात आप जानते हैं, क्योंकि उन सब लोगों ने आपसे ये बात बताई। वहां भी ये शब्द आया है, ये वाक्य आया है, ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपि। यथावत तो उसी श्लोक को यहाँ रखा गया, जिसको वो सनकादि ऋषि जन बोले हैं उसी को श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत गुरुओं की आवश्यकता है, परंतु हाँ, सब गुरु एक बात बताने वाला होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। या नहीं कि कोई गुरु कहे कि ये महामंत्र जपना चाहिए तो कोई कह दे नहीं दूसरा जपना चाहिए, तब तो गुरु तो खत्म हुआ। आजकल हम देखे हैं कहीं कहीं आयोजन होता है तो बहुत से वक्ता एक मंच पर बुलाए जाते हैं, और सब भिन्न भिन्न मत वाले एक बात नहीं बोलते हैं। एक बोलता है कि ब्रह्म निराकार है, उसको भी वही श्रोता सेम रहते हैं, और वक्ता का भिन्न भिन्न मंतव्य रहता है। दूसरा बोलता है तुम भी भगवान हो, केवल शक्ति जगाने की जरूरत। एक बार मैं सुन रहा था, मंच पर से एक व्यक्ति बोल रहा था, बोलते बोलते कहा, देखो भगवान कोई दूसरा नहीं है, तुम भगवान हो, हम भगवान हैं, लेकिन केवल विस्मरण है। तो उदाहरण दिया, एक बार एक बाघ का बच्चा जन्म के साथ ही, मतलब जन्म का दो चार दिन का था, तो बकरियों के झुंड में चला गया। बाघ का बच्चा था, बाघ के संग में रहा नहीं, बकरियों के झुंड में चला गया। तो बकरियों जैसा मैंने करना, घास चरना, जबकि बाघ घास नहीं चरता है, लेकिन बकरियों के संग में रह रहा था तो क्या करे, घास चरने लगा। और वैसे ही डरपोक स्वभाव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बहुत प्रकार से बकरी ही हो गया एक प्रकार से। लेकिन कोई बाघ में से एक दिन उसको मिला, देखा तो रूप रंग बाघ का है, तो समझ गया तो बाघ है। तो उसको सिखाने लगा, ट्रेनिंग देने लगा कि अरे तुम बाघ हो, तुम तो बकरी का आहार करने वाले हो, इतना दिन ही क्यों बन रहे हो। तो बाद में उसे ज्ञान हुआ, तब वो दहाड़ने लगा और उसमें से एक आध बकरी का नाश्ता भी कर लिया। ऐसे हो गया, तो देखो अपने स्वरूप को संभालो, तुम क्या हो, सबको खुलम खुला कह रहा था अयोध्या के मंच पर। अयोध्या में कुछ लोग जुटे हुए थे और उसमें बोल रहा था, तुम ही भगवान हो, भगवान कोई दूसरा नहीं है, तुम बेकार बकरी जैसा हो, तुम हो बाघ वास्तव में, इस तरह से बोल रहा था और तालियां बज रही थी। तो मैं वहां इस्कान का एक आदमी बैठा था, मैं देख रहा था, बाप रे बाप, इस प्रकार। तो मेरे कहने का आशय यह है कि गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक मत के, मत भिन्न भिन्न हुआ तब तो एक ही गुरु ठीक है, तब कोई जरूरत नहीं है कि बहुत गुरु रहे। हाँ, एक मत के हैं, सहायता कर रहे हैं, सेम पथ पर, सेम मंत्र, वही रास्ता, सब ठीक है, नहीं बदल रहे तब ठीक है, कोई बात नहीं, सहायता लेनी ही चाहिए। जैसे नव जोगेश्वर जनकपुर में गए थे, नौ भाई बोले, नौ प्रवचन किए, और महाराज निमि उनसे नौ प्रश्न किए। ऐसा नहीं हुआ कि एक भाई दूसरे भाई को काटने वाला प्रवचन करे और सेम सब एक दूसरे का पोषण करने वाला प्रवचन किए। भागवत धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न हुआ, हरि जी ने उत्तर दिया उसका, पहले कबीर जी ने उत्तर दिया, हरि जी ने उत्तर दिया, भागवत धर्म क्या है, भागवत किसे कहते हैं। तो तीन प्रकार के भागवत होते हैं, जो इस प्रकार से भागवत बन जाता है वह भागवत धर्म का आचरण करके माया से पार हो जाता है। तो प्रश्न हुआ माया क्या है, तो माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान क्या है, नारायण कौन है, इस तरह के प्रश्न गुथे हुए तो आ रहे। नारायण को रिझाने के लिए क्रिया योग क्या है, नारायण कौन कौन अवतार लेते हैं, किस युग में नारायण की किस तरह से आराधना होती है, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे थे। नौ व्यक्ति प्रवचन किए लेकिन टोटल मिलाकर वे एक थे, इस तरह का होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो भिन्न मत बता रहा हो उसके पास सत्संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो दो नौका पर चढ़ने की तरह फजीहत होगी, ये समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर बहुवचन में गुरवः शब्द आया है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, और शिष्य एक वचन में आया, गुरुयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमाप्यत। गुरुजन स्निग्ध शिष्य को, प्रेमी शिष्य को गुह्य से गुह्य बात बता देते हैं, इसलिए महाराज आप सावधानी से सुनिए, बहुत गुह्य विषय है। प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नोत्तर। तथाघ बदनान मृत्यो रक्षित्वा वत्स पालकान सरित पुलिन मानिन्य भगवान इदम अब्रवीत। अघ बदनात अघासुर के बदन से, मुख से, वत्स और पालकान बछड़ों को और उनके पालकों को, बच्चों को रक्षित्वा उनको बचा करके, और भगवान सरित पुलिनम जमुना जी के पुलिन पर लाए उन लोगों को, जहां पर बहुत ही सुंदर सपाट बालुका बिछी हुई थी, तो बालू नहीं था, बालू के ऊपर जहां बिल्कुल जमीन भूमि थी वहां आकर के बैठा है। सरित पुलिनम आनीय, उनको ला करके वहां जिला करके ला करके, और तब भगवान बोलते हैं, अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्या स्वकेली संपन्न मृदुलाच्छ बालुकम स्फुटत सरोगंध हृताल पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान्लस द्रुमाकुलम। हे वयस्या, हे मेरे साथियों, हे मेरे मित्रों, यह पुलिन कितना रम्य है, भगवान अब भोजन करना चाहते हैं, सबको खिलाना चाहते हैं, बहुत देर हो गई थी खेलने में ही, बहुत देर हो गई थी, फिर घासुर के पेट में गए थे वो अलग देर हुई थी, लेकिन बच्चे जो भी सामान लेकर के आए थे भोजन करने के लिए, अघासुर के पेट में जा करके भी वे सारे भोजन जेव के त्यों ताजा थे, सब कुछ बचा हुआ था। भक्ति रसायनम में श्री हरिश्वरी जी कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो कोई भी व्यक्ति कहीं से बच करके आ सकता है, और यहाँ तक कि संसार में साक्षात अघ के मुख में जा करके भी हमारा भोग रहेगा भगवान की कृपा से। जो सुकृत में लिख दिया गया है, जो सुकृत हम किए और कदाचित अघ में चले गए, अर्थात पाप भी कर दिए, परंतु पहले का जो सुकृत साथ में है वो नष्ट नहीं होता है भगवान की कृपा से। बच्चे जो घर से भोजन लेकर के आए थे वो ज्यों करते हैं, तो भगवान लाए और कहे अहो तिरम्यम पुलिनम, यह पुलिन जमुना का तट बहुत रम्य है, हे मेरे साथियों स्वकेली संपन्न मृदुलाक्ष बालक। यह जमुना की केली द्वारा, तरंगों द्वारा बनाया गया बहुत मृदुल और अच्छ बालुका से युक्त बालू है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, मृदुल अच्छ बालुकम, अच्छ माने अच्छा, बहुत अच्छा बालू है, मृदुल है, सॉफ्ट है, बैठने लायक है। और देखो देखो स्फुटत सरोगंध हृताली पत्रिका, यह जमुना का जो सरोवर बन गया है कहीं कहीं, उसमें कमल खिले हुए हैं, उन कमलों पर भौंरे मंडरा रहे हैं, और इस वन में चारों तरफ पक्षी गा रहे हैं, उनकी प्रतिध्वनि हो रही है, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और ये वास्तव में भोजन के लिए बैठने योग्य स्थान है, तो हम लोग यहाँ पर अब भोजन कर लें। अत्र भोक्तव्यम अस्माभिर् दिवारूढ़ सुधार्दितः, मेरे मित्रों अब सब लोग तुम लोग भुखार भूख से व्याकुल हो, भगवान अपने मित्रों के कुछ भूख से कुमलाए हुए मुख कमल को देख करके कह रहे हैं, दया आ गई, जैसे माँ को अपने बच्चे को देख करके दया आ जाती है कि बच्चा भूखा है, उस तरह से भगवान को दया आ रही है कि भूखे हो गए हैं बहुत देर से। दिवारूढ़ दिन चढ़ गया है, दिवा आरूढ़ दिन चढ़ गया है, यह चढ़ने का मतलब है कि दो पहर हो गया है। सवेरे घर से भोजन लेकर के बच्चे चले थे और नहीं खाए थे, उनको ही खा गया था घासू वो क्या खाएंगे, तो भगवान कहते हैं दिवारूढ़ तो अत्र अस्माभि भोक्तव्यम, यहाँ हम लोगों को भोजन करना चाहिए। तो बच्चों ने तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि कृष्ण भी तो भूखे थे, उन्हें अपनी भूख का ध्यान नहीं था बच्चों को, वे कृष्ण को खिलाने के लिए कहे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और कृष्ण उनको खिलाने के लिए कहते हैं खाने का समय हो गया। वत्सा समीपे पहुंचा चरण तुषण का स्त्रीणाम, कुछ बच्चों ने कहा कि लेकिन बछड़े, बछड़ों को भी तो खिलाना चाहिए ना, बच्चे खाने से पहले बछड़ों को खिलाते थे पिलाते थे, तो भगवान कहते हैं वत्सा समीपे अपहपित्वा, इन बछड़ों को पानी पिला दिया जाए, अरे पानी पी करके और समीपे चरण तो सन कही, धीरे धीरे यहीं पर चरते रहेंगे। अब तो भगवान को वो अपहरण कराना था ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों का, तो ये कहते हैं बछड़े भी यहीं पर पानी पी करके चरते रहेंगे, इनको घेरने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रसाद पावे भोजन करें और ये तृणम चरण तो ये तृण चरते रहेंगे, हम लोग खाते रहेंगे वो लोग भी खाते रहेंगे, ये लोग कहीं जाएंगे नहीं यहीं रहेंगे। लेकिन बाद में लिखा गया है कि तृण लोभ से बछड़े कुछ दूर चले गए, क्योंकि भगवान का भोजन में आवेश हुआ तो बछड़ों का भी भोजन करने में आवेश हुआ, तो जानते थे कि हम खूब अच्छा चरेंगे तो कृष्ण प्रसन्न रहेंगे, बछड़ों का पेट भरा हुआ भगवान देखते तो बहुत खुश हो, इसलिए कृष्ण प्रीति के लिए ये सब चरने में आविष्ट हो गए। तो पानी पिलाया गया, पानी पिला करके वहीं निकट छोड़ दिया गया, चरते रहे। तथेति, बच्चों ने कहा तथा इति, बहुत अच्छा जैसा कहते वो ठीक है, ऐसा कह करके वे सब बच्चे बैठे कृष्ण के साथ, कृष्ण बीच में बैठे और उनके चारों तरफ बच्चे बैठे पंक्ति पंक्ति में, कई पंक्तियां लगी थी चारों तरफ से उनके बैठे, और कृष्ण का मुख सब ओर था, कोई भी बच्चा यही देख रहा था कि कृष्ण मेरे सामने बैठा है, जो तत्वत पीछे बैठे थे वो भी देख रहे थे कि मैं कृष्ण के सामने बैठा हूँ। ये सर्वतो मुखम सर, भगवान को कहा जाता है सब और मुख है भगवान, उनके पीठ में और मुख में भेद नहीं है, उस समय वो उसी रूप में दिखाई देने लगे, अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया भगवान ने, समस्त बच्चों को सुख देने के लिए उनके रुचि के अनुसार उनका जूठा खाने के लिए भगवान इस तरह से बैठ, वो बच्चे जो अपने अपने घर से लाए थे प्रसाद श्री रंगनाथ जी का, अपने अपने घरों में ड्यूटी थी उसका प्रसाद लाते थे। कृष्ण को तो भगवान जानते ही नहीं, भोग नहीं लाते थे, प्रसाद लाते थे। लाते थे बांध करके तो बैठना चालू किए, बर्तन घर से नहीं लाए थे, तो वहीं से पत्ता तोड़ करके या वृक्ष की छाल में या पत्थर पर, पत्थर तो वहां नहीं बिछाए क्योंकि जमुना जी का तट है इसलिए पत्थर नहीं है, तो क्या क्या बर्तन बनाए हैं उसका वर्णन आ रहा है। बच्चे खाना चालू करते थे तो सबसे पहले वो आस्वाद करके देखते थे कि कितना अच्छा दही है, कितना अच्छा भात है। दही भात ही मुख्य रूप से लाए हैं, और भी कुछ व्यंजन और कुछ मिष्ठान भी लाए थे, भिन्न भिन्न घर से भिन्न भिन्न लाते थे। कृष्ण दही भात लाए थे तो और बच्चे जो दही भात लाए थे कुछ लाए थे तो पहले खा कर देखते थे और बहुत मीठा होने पर तब कहते थे कृष्ण खाओ खाओ ये बहुत मीठा है, खा करके तब ऐसे खिलाते थे कि ये लो ये खाओ ये खाओ खाओ खाओ। और बच्चों को खिलाने के लिए भगवान ऐसे बहाना करते थे, इनके पत्तल पर जब बहुत ज्यादा परसा जाता था तो भगवान कहते थे, परोसते थे और लोगों को भी देते थे, तुम खाओ 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 खाओ, और खा लेते थे अब नहीं अब नहीं। भगवान कहते थे अरे वो बानर कितना चतुर है, वैसे देखो बानर, तो उधर वो देखने लगता था तो भगवान अपना उठाकर उसमें भर देते थे, अभी तो तुम कुछ खाए नहीं। तो इस तरह से विनोद होता था। कभी कभी भगवान जबरदस्ती छीनते थे, कोई कोई जैसे सिरदार मनसुख आदि सखा थे जो नर्म सखा है, श्री कृष्ण से मजाक करते रहते तो कुछ खा करके और कहते थे अरे बाप रे बाप, जीवन में ऐसा सुंदर मैं नहीं खाया कभी। तो कृष्ण कहते थे दो दो, तो भागता था नहीं दूंगा नहीं दूंगा, तो भगवान उसके मुख में अपना मुख डाल करके कहते थे दो 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 दो, और वो देता था। इस तरह से ये हमारे आचार्यों ने टीका में लिखा है, जबरदस्ती करते थे। इस तरह से भगवान भोग लगाते खाते और श्री कृष्ण के मुख से खाते थे। श्री कृष्ण अपने प्लेट से किसी के प्लेट में डाल सकते थे, वे कृष्ण को डालते थे, ये करते थे। और ब्रह्मा जी तथा सारा देव समाज इस दृश्य को देख रहा था। देवता लोग यही याद कर रहे थे कि वेद मंत्रों से जब भगवान को यज्ञ में बुलाया जाता है तो नहीं आते हैं, कितनी शुद्धि देश काल पात्र और वस्तु की रहती है, कितना शुद्ध तरीके से बुलाया जाता है यज्ञ भोक्ता भगवान को कि यह गच्छ यह तिष्ठ इदम गृहाण ये लीजिए पाइए। वैदिक मंत्रों से भगवान को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, फिर भी नहीं खाते। और इन छोटे छोटे बच्चों का जूठन छिन छिन करके खा रहे हैं, कितनी महिमा है, भगवान कितना प्रेम करते हैं। तो बच्चों से कितना प्रेम करते हैं और बछड़ों से कितना प्रेम करते हैं, उसी प्रेम को तो देखने के लिए ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा लिए कि देखें कृष्ण क्या करते हैं, किस तरह खोजते हैं या रोते हैं उसके लिए। ये ब्रह्मा जी देखना चाहते थे, ब्रह्मा जी को कोई अज्ञान नहीं हुआ कि ये भगवान, वो जानते थे पूर्ण कि ये प्रभु हैं, भगवान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बच्चों ने कहा ठीक है, तो बच्चों को पानी पिलाए, तथेति पायति पायित्वार्भा बच्चा आरुध्य साध बोले। तो जितने बच्चे थे सब ले गए पानी पिलाने के लिए बछड़ों को, पानी पिला करके उनको सादवले दूब के हरे हरे क्षेत्र में हरी हरी घास में उनको छोड़ दिए। आरुध्य मुक्त्वा सिक्यान बुभुजु समम भगवता मुदा, तब बैठे और सबके सामने भगवान थे ही। कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा ऐसा नहीं देख रहा था कि मैं कृष्ण से दूर हूँ। पंक्ति बहुत लगी थी, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, पर प्रत्येक बच्चा यही अनुभव कर रहा था कि मैं कृष्ण के निकटतम बैठ। यह एक अद्भुत भगवान ने ऐश्वर्य प्रकाशित किया। मुक्त्वा सिक्यानि, अब वो जो भोजन लाए थे जिसको छाक कहते हैं, छाक का अर्थ है घर से ले जाना बाहर खाना। गाय भैंस चराने वाले प्राय ऐसे ही खाते हैं, वन में बाहर घर से खाते हैं। तो अपना अपना सीख के खोलने लगे, दही अचार भात मिठाई सब बहुत प्रकार की चीजें लाए, अपना अपना खोलते थे। और खोल करके भगवान के साथ खाना चालू किए। इसका अर्थ यह है कि सबने कृष्ण को दिया, कृष्ण ने सबको दिया, सबका प्रसाद सब खाते। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अपना केवल खा रहा है, वो अपना खा रहा है, ऐसा नहीं था। लाते थे सब, खाते थे एक साथ, अलग अलग लाते थे, खाते थे एक साथ। एक साथ खाना चाहिए, एक साथ खाने से प्रीति बढ़ती है। ऐसे तर्क करने के लिए तो बहुत बहुत तर्क किया जाता है। एक बार कहा गया कि एक साथ खाना चाहिए, प्रेम बढ़ता है, तो एक व्यक्ति कहा कि कई कुत्ते हों एक साथ डाल देने पर खा लेंगे प्रेम से, वो झगड़ा करेंगे। लेकिन अजीब अजीब तर्क दिया जाता है। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क का कोई प्रतिष्ठान नहीं, वास्तव में कोई आधार नहीं है, कुछ भी कहा जा सकता है। प्रश्न ही किया था मैं, कहा कि एक साथ खाना चाहिए, तो उसने कहा कि कुत्ते एक साथ खाएंगे तो नहीं लड़ेंगे, एक साथ खाने से क्या हुआ। हाँ, इस तरह के प्रश्न होते रहते हैं। तो सब बच्चे एक दूसरे को दे करके खाने लगे। समम भगवता, जब भगवान ने कवर उठाया तब सब खाना चालू किए। कैसे कैसे बैठे हैं उसी को सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं। कृष्णस्य विश्व पुरुराज मंडल ही अभ्यान फुल दृशो ब्रजार्भकः सहोपविष्टा विपिने विरेजुः छदा जथाम्भो रुह कर्णिकाया। कृष्णस्य विश्व, कृष्ण के चारों तरफ, विश्व का अर्थ सर्वतः, कृष्ण के चारों तरफ बैठे पुरुराज मंडल है। राजी का अर्थ पंक्ति, पुरु का अर्थ पूर्व, बहुत 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 पंक्तियां लगी। आपने पहले सुना कि सहस्रों सहस्रों बच्चे हैं, तो बहुत पंक्तियां लगेंगी, लेकिन कृष्ण के सामने सब थे। अभ्यानना, कृष्ण के सामने मुख किए थे, फुल्ल दृश्य, उनकी आंखें आनंद से खिली हुई थी। भगवान के साथ वे हैं, खेले हैं अब तक, अब भगवान के साथ खा रहे हैं, ये फुल्ल दृश्य, आंखें प्रफुल्लित। ब्रजार्भ का भी, ब्रज के बच्चे सहोपविष्टा, कृष्ण के साथ बैठे, प्रत्येक बच्चा कृष्ण के साथ बैठे। तो उस विपिन में, वृंदावन में बैठे हुए वे बच्चे कैसे शोभित हो रहे थे, जैसे कमल की कर्णिकाएं शोभित होती हैं। कमल की पंखुड़ियां चारों तरफ रहती हैं और बीच में वो केसर रहता है, इस तरह श्री कृष्ण बीच में विराजे हैं और बच्चे चारों तरफ से। कमल कोष से और कमल की कर्णिका से उपमा दी जा रही है, तो कमल का जो कोष होता है उसमें मुख पीठ आदि का भेद नहीं होता है। तो इसी तरह कृष्ण में और मुख पीठ आदि का भेद नहीं है, सब और मुख ही मुख है, सब और सामने। और बच्चे खा रहे थे, खिला रहे थे, बर्तन क्या क्या बनाए आगे वर्णन करते हैं। केचित पुष्प ही दल ही केचित, कोई कोई पुष्प लिए, कोई बड़ा बड़ा पुष्प और उसको सीख से जोड़ लिए, जैसे कमल का पत्ता बड़ा बड़ा होता है तो पुष्प कहते हैं। तो कमल के पत्ते को अलग अलग करके उसको फैला करके उस पर सामान रखे, चाहे जोड़ लिए सीख से, उसको सी लिए। एक घर से कोई बर्तन नहीं ले गए थे, खाने का बर्तन अलग होता है, सामान ढोने का अलग होता है, तो सामान ढोने भर काफी था, कितना ढोने, छोटे छोटे बच्चे सब। बहुत जाल लेकर के नहीं चलना चाहिए कहीं पर, सामान बहुत कम रखना चाहिए। भोजपुरी में गाते हैं, जाए के अकेल बा झमेल का उन्हें काम के। अकेले जाना है एक दिन दुनिया से, झमेला सब बटोर करके क्या करें। बहुत बहुत सामान, आजकल तो लोग ट्रेन में भी जाते हैं तो खाने के लिए प्लेट ये वो बड़ा बैग ले लेते हैं और सबके सामने बगर बगर खाते रहते हैं। कोई खास खाने का समय भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी खाना ही जीवन का लक्ष्य है तो क्या करेंगे, खाओ खाओ। बच्चे घर से लाए सामान खाने के लिए नहीं लाए, बर्तन नहीं लाए, तो कोई पुष्प पर खा रहे हैं, कोई दलई, दल माने पत्ता जैसे हम लोग खाते हैं, पत्ता पर खा लो, दल को सिल लिए चाहे फैला लिए, पल्लव ही कोई कोई पल्लव पर पत्तों पर, दल का अर्थ है पुराना पत्ता और पल्लव का अर्थ है नया पत्ता, कोई अंकुर ही, कुछ लोग अंकुर में खाए, अंकुर को बर्तन बनाए, यहाँ अंकुर का अर्थ है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका अंकुर चौड़े चौड़े निकलते हैं, वो अर्थ है। फल ही कोई कोई फल पर खाए, पता नहीं कौन फल ऐसा होगा जिस पर वो खा रहे थे। सिख भी त्वक भी दृषद भी चब बुझु कृत भाग में, कोई कोई अपने सिक्के में ही खाने लगे और कोई कोई त्वक भोज तरु, भुर्ज तरु होता है उसके त्वक पर चाम पर खाने लगे, दृषद भी चब कोई कोई पत्थर लाए चौड़ा और उसी पर खाने लगे, दृषद भी चब। चिकना पत्थर हो तो वास्तव में प्लेट से भी अच्छा है ना, पत्थर पर खाए धो धा करके फिर उसको रख दिए, हाँ चाहे छोड़ दिए होंगे प्रचुर प्रसाद उसमें आएंगे कौए चाहे सियार खाएंगे और सब खाएंगे, उनको भी तो भोजन चाहिए। पूरा दूर में ये फीस्ट चल रहा था, बैठा था और बर्तन एक भी नहीं था। आजकल तो मान लीजिए 100-200 या 1000 आदमी जुटे हो और पत्तल ही ना हो तो क्या करेंगे, फर्श पर बिछाएंगे। एक महात्मा ने देखा कहीं पर बैठे थे ऐसे, सीमेंट की जगह थी, फर्श था, इसी ब्रज की ही बात हो गई है, तो आए लोग प्रसाद दिए तो प्लेट था लेकिन और कुछ लाए तो उसके लिए जगह नहीं थी, तो उसको बाहर करके कहते यहाँ रख दो, और उपरसने वाले भी समझ गए रख दे, इसके बाद वहां से उठा उठा कर खाते थे, बाद में धो धा कर ठीक कर दिए, बहुत आवश्यकता बढ़ाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तो केवल कर में ही खाते हैं, हाथ में खाते हैं, उनको करपात्री कहते हैं, बस हाथ में जितना आट गया खाएंगे, चाहे बारी बारी से देंगे तो खाएंगे, उसी से पानी पी लेते हैं, गिलास का लोटा का थाली का काम या अंजलि करता है। भगवान ने मनुष्यों को ऐसा हाथ दिया है कि ये बर्तन बन सकता है, पानी पीने के लिए खाने के लिए कुछ लेकर के, और वास्तव में किसी सन्यासी को साधु को कितनी मात्रा में खाने का अधिकार है, जितना अंजलि में अट जाए वैदिक नियम के अनुसार। गृहस्थ बर्तन रख सकते हैं, बहुत बर्तन में खा सकते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए अंजलि ही पात्र है, और एक बार में जितना हो उतना नहीं होगा तब वो कर पात्री। तो वे बच्चे खा रहे थे इन सब चीजों में, कृत भाजना इन सब से बर्तन बना करके वे लोग खा रहे थे। तो खाते समय ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के कई प्रकार के सखा थे, कुछ है बहुत ही अनुकूल सखा थे, अनुकूल सखा का अर्थ है कि कुछ तो चालू ही नहीं किए, इतने अनुकूल कृष्ण के रहते हैं, कृष्ण खा लेगा तो खाएंगे, गंभीर सीधे साधे, और कुछ नर्म सखा होते हैं जैसे मधुमंगल। नर्म सखा का मतलब है, नर्म का अर्थ मजाक, जब देखिए तब कृष्ण से कोई न कोई हास परिहास करना, तो खाते समय भी हंसी के फबारे चल रहे, जो खाते समय हंसना नहीं चाहिए, दूसरी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां कोई मर्यादा है नहीं, तो खाते समय भी बहुत से हंसी कर रहे थे। सर्वे मिथो दर्शयंत स्वस्व भोज्य रुचिम पृथक हसंतो हास्यंत अभ्य जहरु सहेश्वरा सह ईश्वरा, ईश्वर के साथ भगवान के साथ वे सब खा रहे थे तो अपनी अपनी भोज्य रुचि को दिखा रहे थे। भोज रुचि को दिखाने का अर्थ है खा करके कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से बना हा उत्तम कोटि का समान हमारा, इसलिए दिखा रहे थे कृष्ण मांगे, और उनको अच्छा लगता भी था तो वे भोज रुचि दिखाते थे, प्रशंसा करते थे, हमको ये चटनी बहुत अच्छा लगा, ये दही बहुत अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा लगता है, वो कह भी रहे थे हमको ये चीज बहुत अच्छा लगता है, तो मधुमंगल कह दिए हमको दही बहुत अच्छा लगता है, तो श्री कृष्ण कहते इसलिए सारा दही इसी को दे दो, तब उस पर भंसी होती थी। क्या समझते हो, पेटू समझते हो क्या? मधुमंगल कहते हैं पेटू समझते हो, अच्छा दही कह दिया तो इसका मतलब मैं सब खा जाऊं, मैं पेटू हूँ? नहीं नहीं, जब आप अच्छा कहे तो केवल आपको ही तो अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए सारा दे दिया जाए तुमको। इस तरह से मजाक चलता, अभी ये कहना वो कहना। और मधुमंगल जी कभी कभी कहते थे भोजन पर सबसे पहला अधिकार ब्राह्मणों का होता है, क्योंकि ब्राह्मणों का निर्माण भगवानों का होता है, क्योंकि ब्राह्मणों का निर्माण भगवान ने खाने के लिए किया। तो कृष्ण कहते थे धन्य है धन्य, खाओ खाओ, इसीलिए उनके पत्तल पर हमेशा फेंका करते थे कृष्ण, जाओ खाओ ब्राह्मण हो ब्राह्मण हो। तो कहना छी छी, यह हीर का जूठा मैं खाऊं ब्राह्मण होकर के, ऐसा हमको नष्ट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो कृष्ण कहते थे ऐसे अपने दांतों से मुंह से उनके पत्तल पर रख कर कहते थे 32 बीज परोस रहे हैं तुमको, 32 ब्राह्मण परोस रहे हैं, खाओ। तो बीज कहते हैं दांत को भी, बच्चों का पहला दांत टूट जाता है दूसरी बार जन्म लेता है, तो उनको भी द्विज कहते हैं, दांतों को द्विज कहते हैं। भगवान कहते थे एक एक ब्राह्मण नहीं 32 ब्राह्मण परोसे हैं, खाओ। इस तरह का मजाक चलता था। तो हसंत हास्यंत, वो खा क्या रहे थे, खाते समय भी क्रीड़ा ही चल रही, बछड़ा चराते समय क्रीड़ा, खाते समय क्रीड़ा, हंसना हंसाना, हसंत हास्यंत। कोई ये नहीं कहता था अरे सरक जाएगा, इतना मत हंसाओ, ये क्या कर रहे हैं। तो हंसने में भगवान कृष्ण के मुख से भी दही भात फरफर बाहर हो जाता था, कहीं किसी कहीं और कोई हंसता था, इस तरह से कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, बिल्कुल झूठा भ्रष्ट आचरण। वहां तो बच्चे थे तो सीखे भी नहीं थे सब चीज, मनमाना आचरण हो रहा। और श्री कृष्ण खा रहे थे, बैठे थे बीच में, तो उनकी कैसी शोभा हो रही थी, श्री सुखदेव गोस्वामी गाते हुए कहते हैं, बिभ्रद वेणु जठर पटय श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलानंगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृद हासयन् नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग बालकेलिहि। यज्ञ भुग बुभुजे, यज्ञ भोक्ता भगवान खा रहे हैं, तो उनकी छवि देखिए खाते समय, बिभ्रद वेणु जठर पटयः, जठर पट में बांसुरी खोसे हैं, खा रहे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं खा रहे हैं, तो बांसुरी को यहाँ खोसे हैं, जठर पट पेट के ऊपर जो पट है कपड़ा है उसमें खोसे हैं, अथवा बैठते समय बांसुरी खोस नहीं सकते इसलिए ऐसे रखे हैं लंबा करके। इसका एक अर्थ किया गया कि पेट और पट दोनों के बीच में रखे, तो कोई भी सखा वो छीन सकता था, चुरा सकता था मजाक करने के लिए, तो इसलिए खाते समय सावधानी से रखे थे अपने बीच। जठर पट, जठर का अर्थ पेट और पट का अर्थ है कपड़ा वस्त्र जो पहने थे। प्राय अभी जब बजाते नहीं है तो इसमें खोस करके रखते हैं, यहाँ खा रहे हैं तो हाथ को खाली रखना है, तो इसलिए यहाँ रख लिए हैं अथवा खोस लिए। वेणु, वेणु को तो ऐसे रखे हैं, विभ्रत सब जगह लगेगा, जठर पटयो वेणु विभ्रत कक्षे श्रृंग वेत्रे, और कक्ष कक्ष में सिंह और बेंत रखे। गाय का नाम ले लेकर के बुलाते हैं, बछड़ों का नाम ले लेकर के बुलाते हैं, सिंह की आवाज होती है ज्यादा, तो सिंह बोलते हैं, तो सिंह खोसे हैं, बाएं कांख में एक रखे और छड़ी भी दूसरे कांख में, कक्षे का अर्थ दोनों में होगा। अच्छा, एक तरफ रखे हैं सिंह और बेंत, बामे पाणव मसृण कवलम, और बामे पाण अपने छोटे छोटे हथेली पर बाएं हाथ में मसृण कवल रखे हैं। मसृण का अर्थ साना हुआ, घी और दही, दही में घी डाला गया है, वो तो अपने आप घी लगा हुआ है, सजाव दही है, और उससे भात साना गया है। दही की मात्रा ज्यादा है, भात की कम, और बिल्कुल ठोस है, उसको रखे हैं दही भात के कवर को, मतलब अंगुली के अनुसार, हाथ के अनुसार एक विशाल पिंड है, बाएं हाथ पर कवर रखे हैं। और तत्फलानी अंगुली से, तत्फलानी, तत्फलानी का अर्थ है कि उस दही भात के योग्य फल, जैसे टेटी का अचार या अदरक या मिर्च, अंगुलीसु खा रहे हैं तो जो अचार वगैरह आया है वो भगवान अपने अंगुली में रखे हुए। तत्फल का अर्थ है उस भोजन के योग्य, उस कवर के योग्य, कौन चीज क्या खाना चाहिए। सारा फल सब समय नहीं खाना चाहिए, फल का ही अचार बनता है ना, इसलिए तत्फल लिखा गया। अचार रखे दही भात खा लिए तो फिर मिर्च निकाल कर काटते हैं, या नींबू, ये नींबू समेत नींबू के रस से युक्त अचार अदरक का, मिर्च का रखे हैं और टेटी का भी। तो टेटी का अचार है करीर का, तो उसमें अचार में उसके छोटे छोटे फल में उसकी डंठल लगे हुए हैं, तो डंठल को ऐसे पकड़ कर लटकाए, उसको निकाले, ऐसे खा करके फिर खोस ले, फिर खा रहे हैं और फिर खोस ले। तब फलानी अंगुली सु, दही भात का कवर बाएं हाथ में है और उस भोजन के योग्य आचार वगैरह उन अंगुली में ही, बाएं हाथ की अंगुली में ही। तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदो हास्यन मन में भीषय, और अपने परिकरों के, अपने सुहृदों के, मित्रों के बीच में हैं तथा हास्यन नर्म भीषय, भगवान स्वयं हंसा रहे हैं बात बना बना कर। बताइए जहाँ भगवान जोकिंग करे, भगवान जब हंसाना चाहे तो कितनी बात बोल सकते हैं हंसने लायक। और हंसा रहे थे कि बच्चे और खाएं, हंस हंस करके पचता है तो और खाते हैं, खाना चाहिए खुशी के साथ, रोते हुए नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आदमी बहुत दुबला पतला रहेगा। जो भोजन मिले भगवान का प्रसाद, तो खूब निताई गौर हरि बोलकर आनंद के साथ खाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब आनंद से खाया जाता है तो भोजन भी स्वास्थ्य वर्धक होता है। भगवान खा रहे, इसका अर्थ है ना कि भगवान जैसा हंसी मजाक करते हुए खाए, वैसे पर तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आनंद से खाना चाहिए। तो भगवान नर्म भी, अनेक प्रकार की नर्म कथाएं कह करके हंसा रहे थे और स्वयं भी हंस रहे थे। स्वर्गे लोके मिशति, सारा स्वर्ग लोक जुटा था आकाश में। यहाँ स्वर्गे लोके से तात्पर्य है कि सारे देवता आकर के देख रहे थे, कोई बाकी नहीं था, जिसमें ब्रह्मा जी भी आ चुके थे और भगवान शिव थे, इंद्र प्रधान, ये सब लोग देख रहे थे इस दृश्य, खाना हंसना। वही प्रभु जो यज्ञ में नहीं आते। एक भक्त कवि ने लिखा है कि हे कृष्ण, जब आपको यज्ञ मंत्रों से बुलाया जाता है तो आप मौन रह जाते हैं, आप नहीं बोलते हैं, और वही आप बछड़ों को और गौओं को ही कह करके बुलाते हैं, और छोटे छोटे गोप सखाओं के साथ आप इतना मजाक करते हैं, बोलते हैं, और गोपियां आपको गाली देती हैं, उसको आप सहते हैं, आपको आज्ञा दी जाती है, दी जाती थी बचपन में, तो आप पीढ़ा लाते थे, सामान ढोते थे। निश्चित समझ में आ गया कृष्ण की आप प्रेम के बस में, प्रेम से ही आपको बस में किया जा सकता है, न कि वैदिक स्तुतियों से, यज्ञों से। हृदय से कोई आपको अपना समझे, आपसे प्रेम करे, तो आप प्रेम का उत्तर देते हैं, समझ गया। तो यज्ञ भोग बाल केली ही, यज्ञ भोक्ता भगवान बाल केली कर रहे हैं, खाने में भी बच्चा जैसे क्रीड़ा कर रहे हैं। और स्वर्गे लोके मिशति, सारा स्वर्ग लोक देख रहा है। बहुत निकट से देवता लोग ही बादल की तरह विमान पर सब चढ़े थे और छा गए थे, देख रहे थे सब क्लियर। तो इस प्रकार भगवान खा रहे हैं, भोजन का बहुत बड़ा आवेश था। वास्तव में भोजन का वो आवेश नहीं था, भगवान के साथ खाने का आवेश, भगवान के साथ बैठने का। जो क्रीड़ा होती थी बच्चे चाहते थे बस यही दिन भर हो, यही दिन भर। और भोजन पर बैठे तो दिन भर यही चलना चाहिए, बिना हाथ मुंह धोए दिन बीत जाए कोई बात, हंसी मजाक सब चल रहा था। और जब बछड़ों ने जब ये समझ लिया, वो तो चिन्मय बछड़े हैं कि कृष्ण और गोप सखा सब खा रहे हैं, तो वो भी खाने पर पड़े। भारत एवं वत्स पेशु भुंजा ने स्वच्छतात्मसु वत्सा स्वतंत्र बने दूरम विभुसु तृण लोभिता। उनको भी तृण का लोभ हुआ, भगवान की ऐसी लीला थी, वे भी चरते चरते अंतर वन में छिप गए, वन में इधर उधर चल गए। जो पहले मैदान में थे दिखाई पड़ रहे थे, अब एक भी बछड़ा दिखाई नहीं पड़ा, सब अंतर वन में चले गए। बच्चे तो खा रहे थे, उनकी आत्मा उनका मन तो अच्युत में लगा हुआ था, उनका ध्यान बछड़ों की तरफ गया नहीं। अकस्मात बछड़े जब दिखाई नहीं दिए, किसी का ध्यान गया, तरी बछड़े कहाँ गए, एकाएक वो भोजन रस चाहे भगवत संग का रस नष्ट हुआ, वो चिंता में पड़ गए। जब एक ने कहा तो सब देखने लगे बछड़े कहाँ गए, वही धन थे, अगर बछड़े नष्ट हो जाए तब तो सारा सारी गृहस्थी इनकी खत्म हुई, वही धन थे सर्वस्व। अकस्मात बच्चे जो जैसे जैसे कवर लिए थे, खाना पीना छोड़ दिया और उठने लगे, कोई कोई उठने लगे, हम जाते हैं हम जाते हैं, हमारा बछड़ा कहाँ गया, बछड़ा कहाँ गया, सब उठने लगे। तब भगवान ने कहा बैठो बैठो, तुम लोग खाओ मित्रों, छोड़ो मत, मैं जा रहा हूँ खोजने के लिए। भगवान अपनी शपथ दिलाया कि मेरा शपथ कि तुम लोग उठो, जैसे बैठे वैसे खाते रहो, मैं अभी ढूंढ कर ला रहा हूँ। तो भगवान अपने भक्तों को कहे कि खाओ और हम जा रहे हैं ढूंढने के लिए। तो भगवान तो सब जानते थे कि क्या होने वाला है, वो लोग अंतर वन में ही नहीं गए थे, अब वो ब्रह्मा जी के द्वारा चिरा लिए गए थे। भगवान उधर दही भात का कवर लिए लिए, अंगुली में अचार लिए बेत लिए, ऐसे खोज रहे हैं, बहुत चिंतित हैं, जमुना जी के तट पर खोज रहे हैं, कहीं वन में खोज रहे हैं। भगवान के चेहरे पर विषाद की रेखाएं आ गई थी, खा नहीं रहे थे, अब वो भात लिए लिए ऐसे खोज रहे थे, बिल्कुल रोने रोने जैसे हो गए, खोज करके हार गए। जब नहीं मिले तो फिर इधर आए, इधर आए तो देखे कि जो बच्चे खा रहे थे हजारों वो भी नहीं है। वो सोचने लगे, तो रोने लगे क्या हो गया। और सर्वज्ञ सब जानते हैं, परंतु उनकी लीला शक्ति थोड़े काल के लिए उनको विस्मित कर रही है। तो बड़े फेर में पड़े, तो उन्होंने तुरंत ही समझ लिया, ओ ये मेरे बेटा की करामात है, ये विधि की करामात, ठीक चुरा लिया है तो कोई बात नहीं, भगवान अब खोजने और पकड़ने नहीं जाएंगे। जितने बच्चे थे, जितने बछड़े थे, भगवान स्वयं बन गए। ये लीला आएगी दूसरे सिटी में। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जाने स्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विभुस्तृणलोभितः ऊचे कृष्णस्य भीभयं मित्राणसान्मा विरमत इहान्यस्य वत्सकानः। हे भरतवंशी परीक्षित, एवं इस प्रकार वत्सपेषु वत्सपालों के भूम जाने से भोजन करते समय अच्युतात्मस जिनका मन श्री कृष्ण में अविष्ट था, वत्सह बछड़े तो पर अंतर बने वन के मध्य में वन के भीतर दूराम दूर जमुना के उस पुलिन से दूर बिबिसुह प्रविष्ट हो गए। तृण लोभिता तृण हरी हरी तृणों द्वारा लोभित होकर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन लीला कर रहे हैं। अतः बच्चों का उस क्रीड़ा में बाल केली में भोजन केली में आवेश हो गया। अरे जब इस संसार में साधारण भोजन पा करके और साधारण गोष्ठी में सब डालडा का सामान पा करके भी लोग इतना आनंद से खाते हैं और थर्ड क्लास की चीजें भी हंसते हैं खाते हैं बोलते हैं, तो जहां वस्तुएं बहुत ही दिव्य हैं और भगवान बैठे हैं जिस गोष्ठी में और वे हंसा रहे हैं हंस रहे हैं, तो उनके खाने में कितना आनंद और आवेश हो सकता है इसका कौन अंदाज कर सकता है। तो वे बच्चे सब परम आनंद में डूबे हुए थे खा रहे थे और सबका चित्त अच्युत में लगा हुआ था। अच्युत आत्मा थे सब। आत्मा का अर्थ कभी कभी मन होता है, उनका मन अच्युत में ही लगा हुआ था, अच्युत ही उनके मन बन गए थे। इतना कृष्ण में मन लगा था कि लगता था कि कृष्ण में और उन बच्चों के मन में कोई भेद नहीं है। प्राण भय कान भय प्राण मय, ये में न जानी परे कान है कि प्राण है। गोपीजन कहती हैं कि प्राण ही कृष्णमय हो गया है कि कृष्ण प्राणमय हो गए हैं, कुछ अंतर नहीं लगता है कि यहाँ पर कृष्ण बस रहे हैं कि प्राण बस रहा है, कुछ पता नहीं। तो वे बच्चे कृष्णमय हो गए, उनका मन केवल कृष्ण में लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि बछड़ों का ध्यान नहीं था, जो कार्य करने के लिए ब्रज से आए थे वन में उस कार्य के प्रति इनका ध्यान नहीं था। तो जब भगवत सखाओं का मन आविष्ट था इस भोजन लीला में भगवान के साथ, उसी समय बछड़ों में भगवान की अचिंत योग शक्ति के द्वारा यह आवेश पैदा किया गया, वे भी चरने में आविष्ट हो गए, चरने लगे और चरते चरते इस गोष्ठी से वे बहुत दूर चले गए। जबकि ऐसा कभी नहीं होता था, वे बछड़े सब भगवान के निकट ही रहना चाहते थे, लेकिन आज तृण लोभिता है। इस पर श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखे हैं कि आज ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी बहुत सुंदर सुंदर घास पैदा करके और इनको लोभित करते करते दूर ले गए, क्योंकि भगवान के दृष्टि पथ में बछड़ों को नहीं चुरा सकते थे या किसी भी सखा के दृष्टि पथ में, इसलिए तृण से लोभ पैदा करके ले गए। तृण लोभिता, लोभित का अर्थ है कि इनमें लोभ पैदा किया गया था और यह भगवान की इच्छा थी। वास्तव में भगवान चाहते थे कि ब्रह्मा जी इस तरह बछड़ों का और बच्चों का हरण करें, तो मैं समस्त ब्रज माताओं का और गायों का मनोरथ पूरा कर दूंगा। ब्रज में जितनी भी पुत्रवती स्त्रियां थी माताएं थी, सबके मन में यह अभिलाषा रहती थी कृष्ण हमारा पुत्र बनता है तो बहुत अच्छा होता है, सबकी अभिलाषा थी। यहाँ तक कि गौओं में भी यह अभिलाषा थी कृष्ण हमारा पुत्र बने। तो सर्वज्ञ भगवान जो प्रेम और भाव के अधीन है, वे सोचते रहते थे कि कैसे सबका पुत्र बनूं, तो आज उसको पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए बछड़ों को हटाए, दूरम विभीषु तृणलोभिता। और बच्चे खा रहे थे, हंस रहे थे, हंसा रहे थे, ये सब लीला चल रही थी, तब तक अकस्मात उनका ध्यान गया बछड़ों के तरफ, बछड़े नहीं थे। तान अदृष्टवा भय संत्रस्तान, उन बछड़ों को न देखकर सभी बच्चे भय संत्रस्त हो गए। क्या भय हो गया? भय हो गया कि आज से हमारे परिवार को दूध दही कुछ नहीं मिलेगा, यदि बछड़े गायब हो जाएंगे या कहीं खाई में कूद जाएंगे, गिर जाएंगे या जमुना में डूब जाएंगे, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे विपत्तियां आती रहती थी, जैसे अभी अभी अजगर के पेट से निकल कर आए, किसी तरह भगवान की दया से, विष्णु की दया से बचे, तो ये बछड़े तो फिर कहीं जा करके गुफा में या कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, तो फिर दूध दही आदि नहीं होगा और हम गोपों की जीविका समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से। तो इस पर एक भय हुआ परिवार के दुख का स्मरण करके, और दूसरा भय ये हुआ कि माता पिता डांटेंगे कि तुम लोग खाने में इतने व्यस्त हो गए कि बछड़े नहीं चरा पाए। यह अभी एक बाल लीला का एक आनंद है कि भय हुआ कि वे डांटेंगे मारेंगे, भय संत्रस्त हो गए, भय संत्रस्त हैं। तो अकस्मात दशा हुई, पहले भोजन के आनंद में थे, भगवान के सहवास के आनंद में थे, और एकाएक उनका चेहरा कुंभला गया, चिंता में पड़ गए, शोक करने लगे, तो भगवान ने अपने सखाओं के इस दुख को सहन नहीं कर सके, उनको ऐसा देख करके वे बोले ऊंचे, कृष्णस्य भी भयम्। कृष्ण कैसे हैं? अस्य भी भयम्, अस्य विश्वस्य भी जस्मात्, जिस काल से इस विश्व को भय होता है, समस्त प्राणियों को भय होता है, वह भय भी श्री कृष्ण से भयभीत रहता है, वही प्रभु इन बच्चों के पास हैं, जिनसे काल भी भय खाता है, जिस काल से सारा जगत त्रस्त रहता है, वह काल भी भगवान से डरता है। तो ऐसे सर्वा भयप्रद श्री भगवान उन बच्चों से बोले, मित्राणि आशान मा बिरमत, भोजन से बिरत मत हो, जैसे खा रहे हो खाओ। मित्राणि शब्द से भगवान अपना स्वाभाविक स्नेह प्रकट कर रहे हैं बच्चों के प्रति, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमको दुखी नहीं देखना चाहता, तुम लोग जैसे खा रहे हो खाओ। मां बिरमत, भोजन से बिरत मत हो, खाओ। तो ये लोग कहे कि बछड़े तो सब चले गए, पता नहीं कहाँ गए। तो भगवान कहते हैं, वत्सकान अहम यह आनेश्य, बछड़ों को मैं यहाँ लाऊंगा, तुम लोग जानते हो ना मेरा प्रभाव, अभी अभी वत्सासुर अघासुर को मारा, तो मैं कहता हूँ मैं अभी ला रहा हूँ। तो कहीं दूर नहीं गए हैं, वो यही झाड़ी में छिप गए हैं, वो दूर नहीं। यदि भगवान यह कहते कि वे दूर चले गए हैं, मैं जा रहा हूँ, तो बच्चे सब उठ करके चल देते, हम साथ में चलेंगे, अकेले नहीं छोड़ते कृष्ण को। लेकिन उन्होंने ऐसा संकेत किया कि बस यही है, तुम लोग खाओ, मैं बस लेकर के आ रहा हूँ, ये बात। और भगवान जानते हैं कि वे बछड़े ब्रह्मा जी के द्वारा चुरा लिए गए, अथवा लीला शक्ति इस समय भगवान को मुग्ध कर चुकी है। कभी कभी भगवान की सर्वज्ञता को उनकी लीला शक्ति, स्वरूप शक्ति विस्मृत करा देती है। भगवान को ये रियली पता नहीं है इस समय कि बछड़े कहाँ गए। यह भी एक भगवत्ता है भगवान की, अपना ऐश्वर्य भूल जाना, यह भी एक ऐश्वर्य है भगवान का, यह भी एक उनकी भगवत्ता है, अद्भुत है। इस पर श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने बहुत लिखा है, बहुत विस्तार से। हम लोगों के संप्रदाय में इस संप्रदाय को एक सिद्धांत का रूप देने में जीव गोस्वामी पाद जी का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने सजाया है श्रीमद् भागवतम से और अन्य ग्रंथों से, तो वे बहुत विस्तार से इस बात को लिखे हैं कि क्यों भगवान इस तरह विस्मृत हो जाते हैं, क्यों वास्तव में बच्चा है। जैसे माँ यशोदा ने जब छड़ी उठाया तो भगवान रोने लगे, या रस्सी उठाया तो वे रोने लगे, तो वास्तव में वो रो रहे थे। यह प्रसंग बीत चुका है यहाँ पर। तो इसी तरह भगवान वास्तव में खोजने के लिए चले, पर बच्चों से इतना स्नेह है, इतना स्नेह है कि कहे कि नहीं आप लोग खाइए, भगवान नहीं चाहते हैं कि हमारे भक्त डिस्टर्ब हों, आप खाइए हम जा रहे हैं। कितना प्रेम है, स्नेह है भगवान का कि अपने सखाओं के उस प्रीति को खंडित नहीं करना चाहते हैं, कि एकाएक वे आनंद में थे और एकाएक हा हुताश करते हुए खोजे हैरान हो तो भोजन तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। अभी बहुत कुछ खाने के लिए बाकी था, अभी तो हास प्रहास चल रहा था। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आसान भोजन से माँ बिरमत अहम वत्सकान आने से। अहम शब्द से यह तात्पर्य है कि मेरा प्रभाव तुम लोग जानते ही हो, मैं ला रहा हूँ बचपन। तो सब चाहते थे कि हम भी चलें, तुम कृष्ण खाओ या साथ में चलेंगे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं बस मैं ला रहा हूँ और तुम लोग खाओ। लेकिन जब से भगवान गए वसणों को खोजने के लिए, तब से बच्चे एक कवर भी नहीं खाए। यह 14वें अध्याय के अंत में यह बात आई, बच्चे कृष्ण के बिना एक कवर भी नहीं खाए, एक वर्ष तक वैसे ही रह गए। जब भगवान आए हैं वो तो घटना एक वर्ष के बाद होती है, तब वे खाए। मैं ला रहा हूं वचनों को। इस पर हरि सूर्य जी एक शब्द से उत्प्रेक्षा करते हैं। गो गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, तो कदाचित भक्त जन यदि भगवान के साथ आनंद मना रहे हों, तो भगवत विषयक प्रसाद आदि खा रहे हैं और उनकी इंद्रियां यदि उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएं, विषय में चली जाएं, तो भगवान स्वयं ही उनको खोजने और बस में करने के लिए जाते हैं। कहते तुम चिंता मत करो, तुम मेरे भजन करो, तुम्हारी इंद्रियों को मैं बस में करूंगा, मैं जा रहा हूँ खोजने के लिए। यह एक भाव है, प्रतीक नहीं है, वास्तव में भगवान खोजने गए, गौओं को खोजने गए हैं, इंद्रियों को खोजने नहीं गए हैं। परंतु फिर भी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और इसके द्वारा यह संकेत किया जाता है कि भक्तों को अपनी गो को इंद्रियों को बस में करने के लिए, खोजने के लिए बहुत छटपटाना नहीं चाहिए। भगवान बस में करते हैं इंद्रियों को, क्योंकि ये हृषि केश है, तो भगवान जा रहे हैं वसणों को खोजने के लिए। इत्युक्त्वाद्री दरी कुंज गह्वरे स्वात्म आत्मवत्सकान विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणि कवलो यजौ। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ चूड़ामणि श्री कृष्ण वचनों को खोजने लगे, कहाँ कहाँ, अद्री वे पर्वत में इधर उधर घाटी में जाकर खोजने लगे, दरी पर्वत की घाटी में, पर्वत में कुंज, कुंज कहते हैं जहाँ घनी झाड़ियां होती हैं, लताएं होती हैं, उनमें वे भीतर झांक रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ गए बछड़े, खोज रहे हैं बिल्कुल बालक होकर के, बिल्कुल बाल भाव में है भगवान, भगवान कृष्ण परब्रह्म भगवान सच्चिदानंद सर्वज्ञ भगवान खोज रहे। तो पर्वत में, घाटी में, कुंज में, गह्वर में, कि कहीं गिर तो नहीं पड़े हैं, तृण के लोभ से उधर तो नहीं चले गए, इधर तो नहीं चले गए, सब देख रहे थे, विचिन्वन अन्वेषण कर रहे थे, देख रहे थे। तो पर्वत, घाटी, कुंज और गह्वर में बछड़ों को खोजते समय भगवान की वह छवि कितनी सुंदर है, कभी कभी हमें इस बात का स्मरण होता है कि हे भगवान, उस समय वीडियो कैमरा क्यों नहीं बनाए। ये सब जब सब लीलाएं भगवान की बीत गई तब वीडियो कैमरा बन, कैसे खोज रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने उदास हैं, कितने चिंतित हैं, वह भगवान की छवि भक्तों के हृदय में गड़ जाती है। और सपाड़ी कवल, पाणी पर कवल साथ में है भगवान। यह इसलिए भगवान लिए कि बच्चों को कहे कि खाओ, तो भी उन्होंने यह भी कहा कि देखो मैं खाते हुए जा रहा हूँ, मैं खाते हुए जा रहा हूँ इसलिए तुम लोग खाओ। पर फिर भी वे बच्चे एक कवर भी नहीं खाए, और कृष्ण की बात मान गए, वो समझ गए कृष्ण यही चाहता है, तो वे छोड़ दिए कृष्ण को, चले गए कृष्ण पर सपाणी कवल, अपने पानी में दही भात का कवल लिए हुए जा रहे। भक्ति रसायन में श्री हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि सर्वम त्यजामि समय बहुना किम प्रियामपि, सदाशय गतम भक्तम न कदापि आयात था। भगवान मानो कहते हैं कि समय पड़ने पर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ सकता है। संस्कृत में भात को भक्त कहते हैं, भक्त शब्द ही भात कहा जाता है। तो भगवान सब छोड़ रहे हैं, भात को हाथ में लेकर जा रहे हैं, तो उनके और आशय कहते हैं हथेली को संस्कृत में, सत आशय गतम, भक्त हमेशा भगवान के हृदय में धसे रहते हैं। तो भगवान ये संकेत करते हैं कि मेरे हृदय में बसते रहे मैं मेरे भक्त, और समय पर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी प्रिया को ही छोड़ देता हूँ, परंतु अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता। तो सत आशय गतम भक्तम, अपने हथेली में लिए हुए भक्त को कभी नहीं छोड़ते, खोज रहे हैं लेकिन भक्त को हाथ साथ में लिए हैं। भक्त माने भात और भक्त माने डिवोटी, कहीं कहीं अंग्रेजी ही ज्यादा अर्थ प्रकट करता है। तो भगवान समय पड़ने पर सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त को नहीं छोड़ सकते हैं, भक्त उनके हृदय में बसे रहते हैं। तो भगवान इधर खोज रहे हैं, तो प्रश्न होगा कि वो बछड़े मिल क्यों नहीं रहे थे, क्या हो गए, तो ये हो गए थे। सुखदेव गोस्वामी गाते हुए कहते अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गत मायार्भकाशेषितु द्रष्टुं मञ्जुमहि त्वमन्यदपिता वत्सानितो वत्सतां नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तर्दधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुर मोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्। प्रभवतः प्रभु से, श्री कृष्ण से अघासुर की मुक्ति को देखकर जो पहले परम विस्मय को प्राप्त हो गए थे, वे अम्भो जन्म जनी ब्रह्मा जी कमलज ब्रह्मा, अम्भ जलम और तस्माद ज जन्मो जस्य स, अम्भो अम्भो जन्म जनी, अम्भ से जन्म होता है कमल का, तो कमल को कहेंगे अम्भो जन्म, और उससे जनी जन्म हुआ है जिनका, अर्थात जड़ ब्रह्मा। एक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी पर आक्रोश कर रहे हैं बछड़ा और वत्सप चुराने का, ये तो जल से जन्मे हुए के बेटा हैं, कमल कमलज हैं, तो जल जड़ या जल डलयो रभेदात, संस्कृत में ड और ल में भेद नहीं माना जाता है, जड़ कहिए चाहे जल कहिए। हरिश्चंद्र जी भी अर्थ करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी एक खुश नहीं है ब्रह्मा जी के साथ सुनने से, वे तो बछड़ों को चुराए ही और बच्चों को भी चुराएंगे, उधर भगवान खोज रहे थे अपने बछड़ों को, तो इधर गोप सखाओं को भी ब्रह्मा जी उठा ले गए। तो पहले इनका नाम बताते हैं, जड से जिसका जन्म हुआ है उससे इनका जन्म हुआ है। जलजात कमल तस्मा जनि जन्मो जस्य स। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी को जड़ बना रहे हैं। जड जात तनय ब्रह्मा जी। तो इन्होंने पहले देखा था अपने प्रभु की लीला को, अघासुर की मुक्ति, तो वे और भी महिमा देखना चाहते थे। द्रष्टु मंजु महित्वम अन्यदपि। किसकी मंजु महिमा? मायार्भ कश्य, जो कृपा से अपनी योग शक्ति से, स्वरूप शक्ति से अपना बालक स्वरूप इस विश्व में प्रकट किए हैं, ऐसे परम ईश्वर श्री कृष्ण की मंजु महिमा को देखने के लिए क्या किए कि तद वत्सान गोपों के वत्सों को हर लिए, और इतः वत्स पान अपी। और जब भगवान खोजने गए बछड़ों को, तो इधर बच्चों को भी उठा कर ले गए। अन्य तपि मंजु महित्वम द्रष्टुम। ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं, तो वे अपने प्रभु की, अपने स्वामी की एक बहुत ही मंजु सुंदरम महिमा, एक लीला वैचित्री का दर्शन करने के लिए बछड़ों को और वत्सपों को भी हर लिए। नित्वा अन्यत्र कुरुद्वहांतर दधा। हे कुरुद्वह, हे कुरुकुल तिलक, वे बछड़ों को और बच्चों को नित्वा लेकर अन्यत्र अंतर दधात, ले जाकर के कहीं छिपा दिए, जहां भी रखे होंगे बछड़ों को और बच्चों को ले जाकर छिपा दिए। खे वस्तितो यह पूरा, यह मंजू महिमा क्यों देखना चाहते थे? पहले आकाश में अस्थित होकर उन्होंने अपने प्रभु की इस महिमा को देखा था कि वे अघासुर को मुक्ति दिए। अघासुर के देह से दिव्य ज्योति निकली और वह ज्योति भगवान में समा गई। तो ब्रह्मा जी मंजू महिमा देखना चाहते हैं। तो इस पर एक उत्प्रेक्षा की जाती है कि ब्रह्मा जी क्यों बछड़ा चुराए। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं, दुष्टो यम बहुपात की सुर रिपु नीचस्तमो मात्र भू अग्रे जन्मनि दुर्भवो निराय भाग जस्तम ततो मोचितम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह अघासुर बहुत दुष्ट था, बहुपातकी देवताओं का शत्रु, नीच तमोगुणी, तो बहुत बहुत जन्मों तक दुराचार किया था। तो मैंने निश्चय किया था कि इसको निराय भाग बनाऊंगा, इसको नरक में गिराऊंगा। मैंने बहुत तैयारी की थी अघासुर को नरक में गिराने की। लेकिन दृष्टवा क्रुद्ध मना सनातन गुरु तदगोप वत्सा हृति। परंतु सनातन गुरु, सबके गुरु श्री भगवान के प्रति ब्रह्मा जी कुछ क्रुद्ध से लग रहे थे, क्योंकि तद वितथी कृता निज लिपि मन्य असहिष्णु विधि। ब्रह्मा जी की लिपि को, लेख को एक प्रकार से भगवान ने बर्बाद कर दिया। तो इसलिए ऐसा मानता हूं मैं कि ब्रह्मा जी कुछ क्रुद्ध से थे, इस अयोग्य को क्यों मोक्ष दे दिए, क्यों अपना धाम दिए, लगता है ऐसा, इसलिए वो और महिमा देखना चाहते थे। चल ठीक है, भगवान के प्रति वे असहिष्णु हो गए, तो फिर बछड़ों को क्यों चुराए, चाहे बच्चों को क्यों चुराए? कोई और कुछ कहे होते, भगवान से अगर कहे होते कि आपने ठीक नहीं किया, ये किया वो किया, तो बछड़ा चुराने की क्या जरूरत थी? तो ब्रह्मा जी सोचते हैं, त्वया गो गोपा नाम अवनम यह कार्यम जदुपते। ब्रह्मा जी सोचते हैं मन में कि हे जदुपते, आपका काम है गोपों और गौओं का पालन करना, लेकिन उनके बछड़ों का पालन करना मेरा काम है। कैसे? कि आप पिता हैं, आप जब गौओं और गोपों का पालन करते हैं, तो मेरा, मैं आपका पुत्र हूं, तो मेरा काम है गौओं के बछड़ों का पालन करना। लेकिन यहाँ पे कौन काम उठा लिए? आप आगे गौओं का भी पालन करेंगे और उनके बच्चों का भी, बच्चों का पालन हमको करने दीजिए, इसलिए बछड़ों को उठा कर लेंगे, क्योंकि इसका चरवाह मैं बनूंगा, बछड़ों को मैं चराऊंगा। शायद ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमको एक काम देना चाहिए। इति स्वाभिप्रायम विषय ऋतु निवेश भवते ध्रुवम जद वत्सा नाम अहृतिम अकृतव्य धास्तव सुत। मैं आपका सुत हूँ, पुत्र हूँ, तो जब आप गौओं को चराते हैं तो गौओं के पुत्र को चराने का तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, स्वाभाविक लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो बच्चों को क्यों चुराए? इस पर कहते हैं, जेना भवत सपति मुक्ति रघस तस्य संचिंतितम न किमु तेन तदा निजान। जब अघासुर मुक्त हो गया संसार बंधन से, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इसने क्या शुभ कर्म किया था। तो उन्होंने सोचा कि उसके हृदय की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, जो लोग उसके हृदय में भीतर गए हैं वही लोग जानते होंगे, तो शायद वे बच्चों को इसलिए चुराए कि उनसे पूछेंगे कि अघासुर हृदय में क्या शुभ संकल्प कर रहा है। अगर बच्चे हृदय में रह करके आए हैं, उसके उदर में रह करके आए हैं, तो जानते होंगे, देखे होंगे कि उसके हृदय में कितना शुभ विचार है, क्या है, तब ब्रह्मा जी की शंका दूर हो जाएगी। शायद बच्चों से बारी बारी से पूछने के लिए उनको हर कर ले गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की कल लिपि लोप हुआ था, इससे वे चयन में नहीं थे। वे सर्वदा सोचा करते थे अघासुर कैसे मुक्त हुआ, कैसे मुक्त हुआ। ये सब विनोद का अर्थ है वास्तव में। ब्रह्मा जी को सब मालूम है कि वो कैसे मुक्त हो गया, भगवान की दिव्य महिमा को जानते थे, लेकिन यही मंजू महिमा देखना चाहते थे कि कृष्ण किस तरह खोज रहे हैं और किस तरह अपने को वे गोपों और बछड़ों के रूप में प्रसारित करेंगे। इसी यही मंजू महिमा थी। तो यह प्रश्न यहाँ फिर उठता है कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया और बच्चों को चुराया, तो भगवान ने उनको मना क्यों नहीं किया, बाद में वे डांटे क्यों नहीं? डांट सकते थे कि ऐसी गलती क्यों करता है, जैसे इंद्र को डांटेंगे आगे चल करके, या देवताओं को भी वो चेस्टाइज करते थे, डांटते थे, तो ब्रह्मा को क्यों नहीं पटकारे? तो इसका उत्तर देते हुए हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी का नाम रखा है विधि, तो विधि जो भी करे वो उचित है, तो उसका निषेध वे नहीं करना चाहते थे। जब विधि कर रहा है तो उसका, हम विधि उसको बनाए हैं तो उसका निषेध नहीं करेंगे। शायद भगवान यही सोच करके मना नहीं किया, उसका जो इच्छा हो करे, हम स्वयं ही बछड़ा बन जाते हैं, एक गोप सखा बन जाएंगे। तो इसको कहने विधि रयम इति यह पूरा मयुक्त तमी निषेध पदम कथम नयामी। जिसको मैं विधि पद दे दिया, उसको मैं निषेध पद कैसे कैसे मना करूं? जदुपति रीति तत्र धातु कृत विदपि ततो विदधे न तम निषेधम। इसलिए भगवान ने निषेध नहीं किया। तो खोज रहे हैं भगवान और ब्रह्मा जी चुरा लिए बछड़ों को और बच्चों को, तो ततो वत्सान दृष्ट्वैत्य पुलिने पीच वत्सपान। जब भगवान बछड़ों को नहीं देखे, बहुत हैरान हुए, तो थके मांदे आ करके फिर सोचे कि अब बछड़े नहीं मिलेंगे, तो बड़ी उदासी में वे बच्चों के पास आए, या कहने के लिए कि बछड़े तो मिले नहीं, लेकिन आ करके देखने लगे तो न बच्चे थे, न वहां एक भी बर्तन था, न भोजन, न छींका, कुछ भी नहीं। जो आधा सुधा भोजन किए थे वो सब कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी सब कुछ ले गए थे। तो भगवान पहले तो ये खोज रहे हैं कि कहाँ बैठे थे, यहीं बैठे थे कि दूसरी जगह बैठे थे, फिर अब बच्चों को खोजना चालू किए कि जमुने में पानी पीने गए हैं, कहाँ गए हैं, वे किधर गए, कि वे खोजने के लिए निकल गए। तो भगवान इस चिंता में पड़े हैं कि वे मुझको खोजने के लिए निकल गए क्या, तो फिर अब इनको भी खोज रहे हैं, बछड़ों को भी खोज रहे हैं। अब उभौ उभौ अपि बने कृष्ण बिचिकाय समन्ततः, समन्ततः सब और फिर से दोबारा या तीन बार, चार बार, पांच बार, दस बार इधर खोज रहे हैं, बछड़ों को खोज रहे हैं, अपने सखाओं को खोज रहे हैं, अन्वेषण कर रहे, कहीं नहीं मिले। क्वाप्य दृष्टांतर विपिने वत्सान पालन से विश्ववित, जबकि विश्ववित है भगवान, विश्व में कहां क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, आगे क्या होगा, एक एक सेकंड की बात भगवान को मालूम है, परंतु यहाँ पर वे यह नहीं जान पाए कि बछड़े कहाँ हैं, कहाँ गए, परंतु तुरंत ही इसके बाद इस निश्चय पर आ गए, जान गए कि सर्वम विधि कृतम, ये सब विधि ने किया है। विधि कृतम के यहाँ दो अर्थ है, भगवान ने सब सोचा, सब विधाता ने किया है, ईश्वर ने किया है, लेकिन यहाँ प्रकट अर्थ यही होगा कि विधि ने किया है, मेरा बेटा किया है। कृष्ण सहसा व जगाम, सहसा जान गए कि वो ब्रह्मा चुराया, भगवान किसी से पूछने नहीं गए, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर और टेलीविजन में निकाले कि बछड़े और बच्चे कहाँ गए तब पता लगे, वो भी पता नहीं लगता है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो निकालते हैं, पंपलेट निकालते हैं, रेडियो में बुलवाते हैं और उनके घर का कोई स्वजन खो जाता है, गुमशुदा,